आया था। ऐसे अंततः देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप में, जिसको आड़ में कहा जाता है, देखा जाए तो अंततः हिरण्यकश्यपु भगवान के ही गुणों का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप यहाँ जो संवाद है, वह ब्रह्मा जी को ये सारी योग्यता हिरण्यकश्यपु दे रहा है, क्योंकि जब अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी होती है, किसी से कुछ लेना होता है, तो देने वाले दाता की प्रशंसा की जाती है। हम लोग भागवत में पढ़े हैं बामन और बलि प्रसंग में कि भगवान स्वयं बटुक ब्रह्मचारी बन करके आए, भिखारी बन करके आए बलि महाराज के समक्ष, और मांगने से पहले इतने देने वाले दाता की प्रशंसा उन्होंने किया कि बलि महाराज को कहना पड़ा कि नहीं, हमारा ये कुछ है ही नहीं, जिसका है वो ले लेगा। सेम ऐसा ही प्रसंग यहां है कि ब्रह्मा जी से कुछ चाह है हिरण्यकश्यपु की कि मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए तो आज के श्लोक में बताया जाएगा। हिरण्यकश्यपु क्या मांगना चाह रहा है तो आज वो भेद खोल रहा है, और इसका भी भाव यही है, परोक्ष रूप में आड़ में ब्रह्मा जी से यही कह रहा है कि मुझे आपके बल पर आपसे भी उच्च स्थान मिले, अर्थात आपके ही पद को मैं ले लूं, भाव यह था। इसलिए असुरों के बात पर, राक्षसों के बात पर भागवत कहता है, टीकाकार लोग कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं कि कब उनकी मना स्थिति बदल जाएगी कोई ठिकाना नहीं। भागवत के दसम स्कंद में हम लोग पढ़ते हैं कंस के प्रसंग में कि छोटे छोटे मंत्रियों के कहने से उनकी मना स्थिति बदल जाती है, जो छोड़ने की भावना भगवान के भाइयों को छोड़ने की भावना जो कंस के अंदर आया था वो भी बदल गया। इसलिए यहां जो स्थिति है, सारी कुछ योग्यता, जितने भी शब्द हम भगवान के लिए उपयुक्त करते हैं, शास्त्र में वर्णित है कि भगवान को किस शब्दों से संकेत किया जा सकता है, संज्ञा दी जा सकती है। जितना हिरण्यकश्यपु के पास ज्ञान था, ब्रह्मा जी के लिए वो शब्द दे दिया कि आप है, आप वो है, आप वो है, आप, मतलब कुछ बाकी नहीं। प्रभुपाद जी भी आज के तात्पर्य में लिखेंगे कि हिरण्यकश्यपु का भाव यह था कि वह अमरता का वरदान चाहता था, लेकिन और भी उसके अंदर कुछ इच्छाएं थी कि अमर बनकर के हम क्या करेंगे। तो इससे आगे वाले श्लोक में जो तीन चार श्लोक है उसमें बताया गया है। तो आइए हम लोग इस श्लोक की आवृत्ति करें, उसके बाद आराध्य देव राधिका रमण की कृपा से और समस्त भक्त और गुरुजन की कृपा से इस श्लोक के भावार्थ को, सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसे भाषा हिरण्यकश्यपु की गहरी भाषा है, वैसी ही भाषा साधुओं की होती है। अगर देखा जाए तो हिरण्यकश्यपु की भी पूर्व चरित्र कोई साधारण जीव नहीं थे, इसी प्रकार की भाषा साधु लोग बोला करते हैं कि अपने से बड़े लोगों के प्रति जो शब्द भगवान के लिए उपयुक्त किया जाता है वो श्रद्धा के साथ कह दिया जाता है। मेरे को याद है एक जगह मेरे गुरु महाराज भागवत की कथा कह रहे थे तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ और महाराज से कहता है कि भगवान मैं कुछ पूछना चाहता हूं। तो जब भगवान शब्द प्रयोग किया तो महाराज उस शब्द को अपने ऊपर नहीं लिए लेकिन अति प्रसन्नता के साथ उसके प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया कि अपने से बड़े लोगों के प्रति संबोधन में आदर सूचक शब्द बोला जा सकता है जो भगवान के लिए। महाराज ने यह उसे समझाया क्योंकि आचार्य की पदवी कोई साधारण नहीं है, इसलिए यहां कुछ लेने की भावना से जो कुछ हिरण्यकश्यपु के मन में था, जो भी पकी हुई भाव थी, उसने ब्रह्मा जी के लिए कह दिया। साधु लोग कहा करते हैं कि जो भाव हृदय के अंदर पकता है वही भाव उस व्यक्ति के जीवा पर आता है। तो श्लोक नंबर 35 हम लोग उच्चारण करें। यदि दास्यसे अभिमतान वरान मे वरद उत्तमा भूतेभ्यः विसृष्टेभ्यः मृतुः मा भूत मम प्रभो। यदि दासस्य अभिमतान वरान मे वरदोत्तमम् तद्विस्तृभ्यो मृतुर्मा भुन्मम प्रभो। यदि दासस्य अभिमतान वरान मे वरदोत्तमम् भूतेभ्य तद्विस्तृभ्यो मृतुर्मा भुन्मम प्रभो। नीचे के लाइन में भूतेभ्य शब्द है, विसर्ग है, वो आधा स बना हुआ है और जो द में वह है वो पूरा उच्चारण किया जाएगा। जो द शब्द, जो द अक्षर है वो तीसरे वर्ण में बदल चुका है, इसलिए यहां बीच में त्वत शब्द आ रहा है। यदि दास्यस्य अभिमतान वरान मे वरदोत्तमम् भूतेभ्यः तद्विस्तृभ्यो मृत्युर्मा भुन्मम् प्रभो। बोले यदि दास्यस्य अभिमतान वरान मे वरदोत्तमम् भूतेभ्य तद्विस्तृभ्यो मृत्युर्मा भुन्मम् प्रभो। यदि दासस्य अभिमतान शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की यदि यदि दास्यसे दोगे अभिमतान वांछित वरान वर में मुझको वरद उत्तमा हे समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ भूतेभ्यः जीवों से त्वत् तुमसे विष्णुभ्यः उत्पन्न किए गए मृत्युः मृत्यु माँ नहीं भूत हो मम मेरे प्रभो हे स्वामी। अनुवाद हे प्रभो आप लोग बोलिए हे प्रभो हे श्रेष्ठ वरदाता यदि आप मुझे मेरा मन चाहा वर देना चाहते ही हो तो यह वर दे कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हूँ। ओम यज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथानितं तं सदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिता कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शुद्धवादे पाश्चात देश तारिणे। यदि दास्यस अभिमतान वरानमे वरदोत्तमं भूतेभ्यस्त विस्तृभ्यो मृत्युर्मा भुनमं प्रभो। यहाँ हिरण्यकश्यपु अगर पिछले का श्लोक देखेंगे तो उसमें आया है तस्मै भगवते नमः। अगर उस श्लोक से अर्थ लेंगे तो यह अर्थ निकल रहा है वहाँ कि मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जो जिसके अंदर ये सारे गुण हैं। तो अंततः वह देखा जाए तो भगवान के प्रति वो शब्द आए हैं, लेकिन आज के श्लोक में जोड़ देकर के हिरण्यकश्यप यह कह रहे हैं कि अगर आप मेरे मन चाहा वरदान देना चाहते हैं तो आपके सृष्ट इस जगत में, आपसे इस सृष्ट जगत में जो जीव उत्पन्न हुए हैं उनमें से किसी से मेरी मृत्यु न हो। तो यहां यह अस्पष्ट है, पिछले श्लोक से तो भगवान के प्रति, लेकिन यहां यह अस्पष्ट करता है हिरण्यकश्यप अपने वाक्यों में कि जब वरदान देने वालों में आप श्रेष्ठ हो तो आप मुझे ऐसा वरदान दो कि आपके बनाए हुए इस सृष्टि जगत में जो भी आए हैं या जो भी वस्तु उत्पन्न हुई है उनसे हमारी मृत्यु न हो। कितना बड़ा बॉन्ड बनाया। और इसी प्रकार के सारे साधनों को इकट्ठा करने में और इसी प्रकार की व्यवस्था करने में, जबकि हम जानते हैं, सारा ये जगत के जीव जानते हैं कि कितना भी हम प्रयास करेंगे लेकिन यह शरीर अपने आप एक दिन छोड़ देता है। नौ योगेश्वरों के प्रसंग में आया है, नौ योगेश्वर लोग में से एक कवि जी हुए, वो कहते हैं कि जीव इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, अर्थात इसकी इसमें इतनी अभिमति बन जाती है, इतना इसमें अपनी आसक्ति उत्पन्न कर लेता है देह और देहज से, अपने शरीर से और इस शरीर से उत्पन्न वालों से इतना अपनी आसक्ति बढ़ा लेता है कि वह छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यह शरीर ही उसको छोड़ देता है। नहीं जाने के बाद यह शरीर ही उसको छोड़ देता। और हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के अंदर कि जब वसुदेव जी अपने पुत्रों को छुड़ाने के लिए, और इससे पहले आया है कि अपनी पत्नी देवकी को बचाने के लिए, जितने उनके पास बुद्धि थी और जितने नीति जानते थे वसुदेव जी, उसके अनुसार उन्होंने यह निर्णय ले लिया था कि किसी भी प्रकार से हमें इस समय तो देवकी को बचा लेना है, क्योंकि वसुदेव जी को यह पता था कि जो कुछ भी कर रहा है कंस अभी जो कर रहा है शारीरिक धरातल पर कर रहा है, अपने इस शरीर को बचाने के लिए, इस शरीर से इतना इसकी आसक्ति हो चुकी है, अहम भावना हो चुकी है कि ये मार देगा, इसलिए मैं भी यह निर्णय लेता हूं कि मैं भी किसी न किसी जे न के न प्रकार न मैं देवकी को बचाऊंगा। तो उस प्रसंग में वसुदेव जी एक श्लोक बोलते हैं कंस को समझाते हुए, कहते हैं कि हे वर असुरवर कि मृत्यु जन्मवतां वीरम देहे न सहजायते। हे असुरवर, आप इस बात को तो जरूर जान लो कि जिस दिन जीव जन्म लेता है देहे न सहजायते उसी देह के साथ मृत्यु भी जन्म ले लेती है, इसलिए आप जिस शरीर को बचाने के लिए इस सिद्धांत पर तुले हो कि हम देवकी को मार देंगे तो न देवकी रहेगी, न कृष्ण पैदा होंगे, न मैं मरूंगा, लेकिन आप इस बात को कान खोल करके सुन लो कि जिस दिन आपने जन्म लिया उसी दिन आपके जन्म के साथ साथ आपकी मृत्यु जन्म ले चुकी है। अगर इस बात को सिद्धांतत अगर कोई भी जीव अपने जीवन में लागू कर ले कि अंततः एक दिन मरना ही है, तो हम इस शरीर से ऐसे कार्य क्यों नहीं करें कि जिससे हमें फिर इस आवागमन के संसार में आना ही न पड़े। आद्यवाद सतांते मां मृत्युम नाम प्राणिनाम ध्रुव, उस पर स्टैंप लगा दिए वसुदेव जी कह करके कि देखो हे राजन, आप मारना चाह रहे हो ना, लेकिन आपके जन्म के साथ साथ आपकी मृत्यु जन्म ले चुकी है, तो आपकी मृत्यु ध्रुवम निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। आद्यवाद आज मरो या सतांतेवा या 100 वर्ष के बाद मरो, लेकिन मरना ध्रुव है। क्या हम लोग इस बात को नहीं जानते कि आज हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि कब मरेंगे, लेकिन कहां तैयारी कर रहे, कहां उस आवागमन से छूटने के लिए हम कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे पूर्णतः विश्वास हो जाए कि नहीं हम मरणासन है। और इसी प्रकार के प्रश्न के आवेश में सुखदेव गोस्वामी पूरे भागवत को ले राजा परीक्षित को, उनका पहला प्रश्न यही था कि जो मरणासन जीव है उसके लिए सबसे जरूरी कार्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो मरने वाला है उसको कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जो मरे ही ना। भागवत कहता है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि जो व्यक्ति भक्ति पथ पर चलते हुए अपने द्वारा किए हुए सारे क्रियाकलाप को भगवत चरणों में न्यौछावर करता है, तो वह मरणशील होने के बावजूद भी वह मरा नहीं है, क्योंकि उसका इस शरीर के जीते जी भी उसका निवेदन भगवान के चरणों में है, वो प्रार्थी है, भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना करने के बाद अगर ये शरीर भी छोड़ दे तो भगवान के चरणों में हो जाएगा। इस प्रकार की जिस प्रकार की एक निश्चयता इन श्लोकों में हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के प्रति अगर बोला है, अगर उस श्लोक को अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेम दोहराते हैं उस श्लोक को भगवान के लिए, तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जीव मेरे से कुछ कहे, मेरे से कुछ मांगे। ऐसा कौन पिता होगा जो चाहेगा कि मेरा संतान मुझसे कुछ कहे ही नहीं। परम पिता है तो जरूर इच्छा रखते हैं, हम लोगों से कुछ अपेक्षा रखते हैं। तो जो भाव या हिरण्यकश्यपु का ब्रह्मा जी के प्रति है, अगर वही भाव, वही प्रार्थना, वही शब्द, वही भावावेश या वही आतुरता, जिस प्रकार की आतुरता है हिरण्यकश्यपु को अमर बनने की, अगर वही आतुरता कि हमारी आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, आपके चरणों से हम दूर न जाएं, ये भाव लेकर के हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम नहीं मरे। चाणक्य पंडित एक श्लोक के अंदर लिखते हैं कि चलम चित्तम चलम वित्तम चलेत जीवेति यौवनम, चलेत जीवेति यौवनम कीर्ति जस सजीवति। सारा कुछ चलायमान है, चलम चित्तम, हमारा जो चित है, मन है, बुद्धि है, सारा विचरण करता रहता है, चलायमान है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। चलम वित्तम, धन भी चलायमान है, कभी अमीर हुए कभी गरीब हुए। चलेत जीवेत यौवनम, यह जीवन चला जाता है, बचपना चली जाती है, जवानी आती है, जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आती है, सारा कुछ चलायमान है। लेकिन इस सारे कुछ चलायमान होने के बावजूद अगर इस जीवन से हम भक्ति कर लेते हैं और कोई यह कहता है कि यह एक बहुत बड़ा साधु था, यह एक बहुत बड़ा भक्त था, तो वह व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद भी वो मरा नहीं है, कीर्ति जस सजीवती, क्योंकि उसके नाम पर लोग भगवान को भी याद कर लेते हैं कि यह भगवान का सेवक था, वह भगवान का भक्त था, इसलिए वह मरा नहीं है। इस प्रकार की अमरता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। देखी जा रही है कि सारी स्थितियां दिन प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बदल रहा है। पीछे के श्लोक में हिरण्यकश्यपु कहा है ब्रह्मा जी के लिए कि आप लौ के रूप में, क्षण के रूप में, समय के मापदंडों के रूप में आप सारे जीवों की आयु को छीन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसने कहा ब्रह्मा जी के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूं, मैं काल के रूप में सबका आयु हरण करता। लेकिन वो ब्रह्मा जी के प्रति न्योछावर है, तो ब्रह्मा जी के प्रति अभाव कह रहा। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के अंदर एक श्लोक ब्राह्मणों ने कहा है, जब ब्राह्मण पत्नी भगवान को खिला करके, कृष्ण बलराम को खिला करके वापस आती हैं और डरती हुई आती हैं कि हम लोगों ने अपने पतियों के बात की उल्लंघन करके हम लोग गई हैं, तो शायद पति हमें स्वीकारेंगे नहीं। लेकिन भगवान ने आश्वासन देकर के भेजा था कि जाओ, पहले से ज्यादा प्रेम मिलेगा। जब ब्राह्मण पत्नियां आती हैं वापस अपने घर में, तो ब्राह्मण लोग केवल उनको देख करके एक श्लोक बोलते हैं, धिक जन्मनि नास्ति तद्विदम् यद्विदम् व्रत धिक बहुगतम् धिक कूलम् धिक क्रिया दाक्षम् स विमुखा त्वद अधोक्षजे। ब्राह्मण लोग अपने ऊपर कह रहे हैं कि धिक्कार है इस जन्म को, धिक जन्मनि, धिक्कार है इस जन्म लिए हुए ब्राह्मण परिवार में, धिक नास्ति त्रिवेदम्, धिक्कार है ऐसे जीवन को जो तीनों वेदों के ज्ञान को हम जानने का अधिकार रखते हैं ब्राह्मण लोग, इस जीवन को धिक्कार है, अपने को हम ज्ञानी समझते हैं। क्योंकि ब्राह्मण लोग यज्ञ करने में लगे थे, धुआं पीने में लगे हुए थे, ब्राह्मण के भगवान के वाक्यों पर ब्राह्मण लोग ध्यान नहीं दिए। अब उनका दिमाग का पट खुला, अपने पत्नियों के भक्ति को देख करके, भाव को देख करके अपने जीवन को ब्राह्मण लोग धिक्कारते हुए कहते हैं कि धिक्कार है धिक जन्मनि, धिक नस्त त्रिविदम्, वैसे जीवन को धिक्कार है जो तीनों वेदों को ज्ञान को जानते हैं, यद्विदम्, अपने को तथाकथित ज्ञानी कहने वाले, विदह यद्विदह मतलब सब कुछ जानने वाले, व्रत धिग बहु गेतव, बहुत व्रत करने वाले को भी धिक्कार है। बहु गेतम, अपने ज्ञान का वर्चस्व दिखाने वाले वैसे जीवन को भी धिक्कार है। क्यों भाई धिक्कार है? क्योंकि उस जीवन से हम अगर भगवान की भक्ति नहीं किए, भगवान की सेवा नहीं किए, तो कहते हैं नीचे वाले श्लोक, नीचे वाले लाइन में, धिक कुलम, वैसे कुल को धिक्कार है, ब्राह्मण कुल को धिक्कार है, ब्राह्मण कहलाने वाले हम लोग हैं, हम लोगों को धिक्कार है। देखिए कितनी ग्लानि महसूस होती है जब किसी ज्ञानी व्यक्ति के समक्ष या भक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति के समक्ष जब कोई व्यक्ति जाता है और उसके साथ में अपनी तुलना करता है तो उसका दिमाग खुलता है कि यार मैं तो अपने को सब कुछ समझ रहा था लेकिन ये तो हमसे भी आगे निकल। धिक क्रिया दाक्षम, वैसे जीवन को धिक्कार है जो सारे संसारिक कार्य करने में दक्ष है, प्रवीण है, सारे जीवन को ब्राह्मणों ने धिक्कार लिया लेकिन लास्ट में कहा क्या कि क्या करना चाहिए कि त्वद विमुखा अधोक्षजे, सारी योग्यता को प्राप्त करने के बाद अगर कोई व्यक्ति भगवान अधोक्षज के शरण नहीं लिया है, वो विमुख है, तो वैसे जीवन को धिक्कार है। केवल एक शब्द उस श्लोक में से हटा दीजिए कि विमुखा शब्द, अगर हम विमुख नहीं है तो सारे कार्य कर रहे हैं अगर अधोक्षज की प्रसन्नता के लिए तो हमारे इस जीवन को धिक्कार नहीं। सारी योग्यता प्राप्त करने के बाद अगर हम भगवान अधोक्षज से विमुख हैं तो वैसे जीवन को धिक्कार है। यह भाव होने चाहिए कि इस मनुष्य शरीर को धिक्कार है कि इस शरीर को भगवान ने केवल दिया मानुषम तनुमाश्रितम, जो यह मनुष्य का शरीर हम लोग धारण किए हैं, तो केवल एक ही उद्देश्य है, कृष्ण सुखा अनुभूति, कृष्ण की भक्ति की सुख की अभिमति करके हम सुख का आस्वादन करें, इसके लिए यह शरीर मिला हुआ। नहीं तो इस शरीर से हम लोग सुख खोज रहे हैं कई जन्मों से, इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में आए और हर जन्म में हम लोगों ने प्रयास किया कि सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, लेकिन वो कहीं नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है ना कि दुखालयम अशाश्वत, मैंने इस जगत का निर्माण किया, मैंने इस जगत का कर्ता वर्ता स्वयं रहते हुए भी ऐसे इस जगत को बनाया कि दुख आलय है, दुख का भंडार है, और हम लोग आकर के सुख खोजते हैं, कहां मिलने वाला है। इसी प्रकार के इसी स्कंद के अगर चौथे अध्याय में जाएंगे तो शायद चौथा अध्याय स्कंद 7 अध्याय 4 श्लोक नंबर 27 है मेरे ख्याल से, कि जिस श्लोक के अंदर भगवान जब ब्रह्मा जी का वर, ब्रह्मा जी से वर जब प्राप्त कर लिया हिरण्यकश्यपु तो लगा सबको सताने, अनाचार अत्याचार उसका बढ़ गया, तो इसकी इस क्रिया को देख करके ब्राह्मण लोग फिर पहुंचे हैं भगवान के पास और कहते हैं कि ये तो अंत कर दिया, ये तो इतना कष्ट दे रहा है, इतना हम लोगों को सता रहा है, कि अब हम लोगों को जीना हराम कर दिया है। तो भगवान उन ब्राह्मणों को संतुष्टि देते हुए उन्होंने एक श्लोक कहा है, कहते हैं कि वेदेषु देवेषु वेदेषु देवेषु गोषु साधु विप्रेषु साधुषु देवेषु वेदेषु देवेषु गोषु साधुषु विप्रेषु साधुषु। केवल सुसु शब्द आया है बहुवचन में, कि वेदेषु जो वेदेषु जो वेद को जानने वालों से या जो वेदों से घृणा करता है, देवेषु जो हमारे भक्तों से देवताओं से जो घृणा करता है, विप्रेषु जो ब्राह्मणों से घृणा करता है, साधुषु जो साधुओं से घृणा करता है। तो नीचे के लाइन में कहते हैं कि भक्ति चे भक्ति ते च महिम सवा आसु विनश्यति। जो वेद से घृणा करते हैं, जो ब्राह्मणों से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, जो साधुओं से घृणा करते हैं, जो धर्म पर चलने वाले व्यक्ति हैं उनको बाधा डालते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मई च भक्ति, और जो मेरे भक्ति में लगे हुए हैं अगर उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो भगवान ब्राह्मणों को वचन देते हुए कहते हैं, आश्वासन की अनुभूति कराते हुए बोलते हैं कि स वा आसु विन्यसति। कि हे देवता, आप ध्यान से सुन लो कि यह अब जब अंत कर दिया है हिरण्यकश्यपु, आप लोगों को जीना हराम कर दिया है, तो मैं वचन देता हूं कि स वा आसु विनश्यति, कि वह वा से अर्थ है अथवा इसके संप्रदाय में जितने भी इसके मेंटालिटी के लोग होंगे, आसु विनश्यति, शीघ्र ही उनका विनाश होगा। कहने का अर्थ भगवान का यह था कि मैं जल्दी ही हिरण्यकश्यपु का वध करूंगा। यह स्थिति है, भरोसा रखो भगवान के ऊपर। जितनी भरोसा ब्रह्मा जी के ऊपर हिरण्यकश्यपु कर रहा है, हिरण्यकश्यपु से हम लोग निवेदन करें कि हे हिरण्यकश्यपु, वो भाव भगवान के प्रति हम लोगों के हृदय में ट्रांसफर कर दो, कि ये भाव भगवान के प्रति बना रहे। भगवान के वचन कभी झूठे नहीं होते, क्योंकि भागवत के दशम स्कंद में भी या प्रथम स्कंद में भी इसकी पुष्टि की गई है। भगवान कहते हैं कि त्रिसत्यम, तीनों काल में मैं केवल सत्य हूं। ऋग्सत्र नेत्रम, सारे वेदों में ढूंढ करके देख लो, केवल मैं ही सत्य हूं और कोई सत्य नहीं है। दुनिया बदल जाए लेकिन मैं बदल नहीं सकता। इतनी परिपूर्ण विश्वास भगवान के प्रति होना चाहिए। भगवान ब्राह्मणों को आश्वासन देते हैं, साधुओं को आश्वासन देते हैं, शास्त्रों को आश्वासन देते हैं, तो क्या हम लोग उसके अंदर नहीं है? पक्का भगवान हम लोगों की रक्षा करेंगे। लेकिन विश्वास करने की जरूरत है इन वाक्यों पर। आप सोचिए, जितना विश्वास हिरण्यकश्यपु को अटल विश्वास ब्रह्मा जी के प्रति है, अगर उतना ही विश्वास अगर भगवान के वाक्यों पर अगर हम लोग करें, तो क्यों नहीं बेड़ा पार है? अभी पार होने की बाकी नहीं, हम लोग पार हो चुके। अगर ये विश्वास है तो अवश्य रक्षिवे कृष्ण करिवे विश्वास, अवश्य भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, करेंगे या करते थे तीनों काल में। लेकिन विश्वास होने चाहिए। अभी श्लोक के संदर्भ में प्रभुपाद जी श्लोक के भावार्थ को किस प्रकार से अपने हृदय की भाव व्यक्त करते हैं उसको हम लोग सुने। जो प्रत्यक्ष और परोक्ष जो दोनों भाव छिपा था, रूपा जी इस तात्पर्य के अंदर उन्होंने खोला है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज की अनुवाद को ध्यान में रखते हुए इस तात्पर्य को समझने का प्रयास कीजिए कि हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मनचाहा वर देना चाहते, मेरा वर मनचाहा वर देना ही चाहते हैं, तो यह वर दें कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को न प्राप्त हूं। बताइए हम लोग क्या प्रयास नहीं करते हैं इस शरीर को बचाने के लिए। चाहे लाखों जीव को मारना पड़े लेकिन हम जीवित रहे, ये क्या कोई मनुष्यता का प्रतीक नहीं है? ये शरीर चाहे लेकिन अन्य दूसरे लोगों की रक्षा हो पाए, लेकिन हम लोग उल्टी जलते। साधु का पथ जो है बिल्कुल ही संसारिक जीवों से अलग होता है। संसारिक जीव चाहे अपने शरीर के लिए जितना भी हत्या करके सुख से रहना चाहे वो करने के लिए तैयार है, लेकिन साधु कहते हैं कि जितना कष्ट होना हो इस शरीर को हो जाए लेकिन किसी दूसरे की भला हो। कल जैसे अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे त्रिणादपि सुनिश्चित श्लोक के ऊपर, यह श्लोक सूत्र है भक्ति को मापने के लिए। यह श्लोक सूत्र है। आप सोचिए पेड़ से ज्यादा सहनशील और कौन हो सकता है? पत्थर मारो फिर भी बदले में फल दे, परोपकाराय फलंत वृक्ष, परोपकाराय दुहंत गाव, परोपकाराय इदम शरीरम। एक नीतिकार ने एक श्लोक में लिखा है कि परोपकार के लिए यह शरीर मिला है। जैसे पेड़ शरीर धारण करते हैं तो दूसरे को फल देने के लिए, गाय दूध देती है तो दूसरे के जीव को पाल, दूसरे के शरीर को पालन करने के लिए, उसी प्रकार यह शरीर इदम शरीरम परोपकार इदम शरीरम, परोपकार के लिए यह शरीर मिला हुआ। असली परोपकार यह है कि हम किसी को वास्तविक स्वरूप को बताने में सहयोग करें, उसका जीवन दिला दें, वास्तविक जीवन दिला दें कि हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं। ये चीज हम किसी को देते हैं या दिलाने का प्रयास करते हैं तब तो अपना जीवन धन्य है। इसीलिए भगवान की ये वाक्य है जिसको उन्होंने सूत्र रूप में केवल चैतन्य महाप्रभु केवल 6 श्लोक बोले, ज्यादा और कुछ नहीं बोले, और उसी श्लोक के अंदर 6 श्लोक के अंदर सारे जितने भी शास्त्र हैं उनका निचोड़ मूल तत्व उन्होंने दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं श्लोक के तात्पर्य में कि गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से उत्पन्न होकर ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा ने इस संसार में रहने के लिए विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न किए। सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी, उनके उच्च केंद्र भगवान है लेकिन जीवों में प्रथम जीव ब्रह्मा जी। अतः सृष्टि के प्रारंभ से सारे जीव एक श्रेष्ठ जीव से उत्पन्न हुए हैं। देखा जाता है कि भगवान ने अपने नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देखा जाता है कि एक श्रेष्ठ जीव से और अन्य जीवों की उत्पत्ति होती है। प्रभुपाद जी संकेत कर रहे हैं पीछे, ब्रह्मा जी से पीछे, तो ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाला कोई और श्रेष्ठ है। अंततो गत्वा कृष्ण ही श्रेष्ठ जीव और अन्य सबों के जनक हैं। स्पष्ट प्रभुपाद जी ने कर दिया कि ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले श्रेष्ठ कृष्ण हैं। अहम बीज प्रद पिता, प्रभुपाद जी कोट करते हैं भगवद गीता के श्लोक को कि वे समस्त जीवों के बीजदाता पिता हैं। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के अंदर कहा है कि मैं संतान उत्पन्न करने में जो काम वृत्ति है, शुद्ध काम को मैं, अगर भगवान चाहे किसी जीव को या किसी माता पिता के संसर्ग से किसी जीव को उत्पन्न कराना चाहे तभी कोई जीव जन्म ले सकता है, अन्यथा किसी स्त्री और किसी पुरुष में ऐसी शक्ति नहीं है कि जो किसी जीव को उत्पन्न कर सके। यहाँ तक हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की पूजा भगवान के रूप में की। अब देखिए, यहाँ इससे स्पष्ट होता है हिरण्यकश्यपु ने पीछे जितने श्लोक कहा है, जितने भी अपने हृदय के भाव को व्यक्त किया है वह ब्रह्मा जी के लिए किया है, क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ तक कि हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की पूजा भगवान के रूप में की और समझ करके कि ब्रह्मा भी अमर नहीं है, अमर नहीं है क्योंकि कल्पांत के समय वे भी मर जाएंगे, इसलिए ब्रह्मा जी से वह कहा कि आपके द्वारा उत्पन्न जीवों से मेरी मृत्यु न हो। उसका कहने का भाव यह भी था कि मैं ऐसे अमर बनना चाहता हूं कि अगर आप भी मरना चाहे तो भी नहीं मरूं, क्योंकि असुर है ना। रूपा जी इसलिए कहा करते थे कि आज के जो तथाकथित ज्ञानी हैं वैसे ही भगवान बनना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो भगवान बनना चाहते हैं कि सारे लोग हमारी सेवा करें, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि सब मिलकर के भगवान का सेवा करें। हिरण्यकश्यपु अत्यंत सतर्क होकर ऐसा वर मांग रहा है, किंतु अब यह समझ करके कि ब्रह्मा भी अमर नहीं है क्योंकि कल्पांत के समय वे भी मर जाएंगे, हिरण्यकश्यपु अत्यंत सतर्क होकर के वर मांग रहा है। क्या प्रभुपाद का कहने का क्या तात्पर्य है कि जब ब्रह्मा जो मरने वाला खुद ही है वो मुझे अमर क्या बनाएगा? तो इससे भाव निकलता है कि अर्थात आपसे ही नहीं, आपसे कोई श्रेष्ठ और चीज चाहिए मुझको। जो अमरता के ही समकक्ष है उसका पहला प्रस्ताव है कि वह इस भौतिक जगत के भीतर ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार के जीव के द्वारा न मारा जाए। ऐसा बॉन्ड बना लिया कि वह सोचता था कि मैं इतना चतुर हूं कि अब तो ऐसा बॉन्ड बना लिया कि मैं मरूंगा ही नहीं, लेकिन यह नहीं जाना कि बुद्धिमानों को भी बुद्धि देने वाला के पास और कुछ बुद्धि है। भगवान ने ऐसा रास्ता निकाला कि लो जब तुम सारे बॉन्ड बना लिए तो इससे एक अलग मैं रास्ता निकालता, और ऐसे रास्ता निकाल करके भगवान ने उसको भी ध्वंस किया। आप लोग ध्यान दीजिएगा पढ़ने वाले भागवत को कि इस अध्याय के पहले श्लोक के अंदर जो नारद जी युधिष्ठिर महाराज के जो कथा सुना रहे हैं, पहले श्लोक का जो प्रश्न है उसका उत्तर इस श्लोक के लास्ट वालों श्लोकों में दे रहे हैं कि क्या क्या हिरण्यकश्यपु को चाहिए। अब वो सारी चीज यहाँ आएगा और इसके बाद तो फिर एक कथा का विस्तार होगा आगे वाले अध्याय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद महाराज की ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की उपस्थित भक्तवृंद की गौर हरे प्रभानंद।